कुछ देर में दोनों को बुलावा आया। अहाना ने फलक के साथ मिलकर सबको नाश्ता परोसा और फिर उसे अपने साथ बिठा लिया। रूपाली जी पहले ही अहाना के अभिजीत जी से पर्दा न करने पर खिन्न थीं, अब उसके साथ बैठकर खाना खाने पर और ज्यादा चिड़ उठीं। वहीं दृशांत को सुकून सा मिल गया। नाश्ते के बाद रूपाली जी ने औपचारिकता निभाते हुए अहाना को तैयार होने भेज दिया और खुद उसकी विदाई की तैयारी करने लगीं। अहाना ने खाना बनाते हुए खराब हो गई साड़ी बदली और तैयार होने लगी। कुछ देर बाद अक्षय कमरे में आया। अहाना, तैयार हो गई आप?
जी, बस कुछ सामान रखना है।
अहाना ने तुरंत हामी भरी और बैग पलंग पर रखकर अपने साथ ले जाने वाली कुछ चीज़ें उसमें रखने लगी, क्योंकि बाकी सब वहां पहले से ही था। अक्षय हाथ बांधे खड़ा खामोशी से उसे देखता रहा, मानो उसकी मनोहर छवि को अपनी आंखों के रास्ते दिल में बसा रहा हो। अहाना, भैया को देखकर इतना रोई क्यों आप? कुछ देर की खामोशी के बाद अक्षय ने सवाल किया। बैग की चेन बंद करती अहाना सवाल सुनकर उसकी ओर मुड़ी। पहले कभी उनसे और बाकी सबसे दूर नहीं रही। आज इतने दिनों बाद मिले तो खुद को संभाल नहीं पाई। कोशिश की थी पर आंसू छलक ही आए। और अगर अब आपके आंसू देखकर उन्हें लगा कि मैं उनकी बहन का ख्याल नहीं रखता, उसे खुश नहीं रखता और यहाँ आपके साथ कुछ गलत व्यवहार हो रहा है, आप दुखी हैं तो? अक्षय का अगला सवाल सुनकर अहाना के लबों पर सौम्य सी मुस्कान बिखर गई। आप इसकी फिक्र मत कीजिए, हमने उन्हें बता दिया है कि हमें यहाँ कोई तकलीफ नहीं, भैया कुछ गलत नहीं सोचेंगे। और अगर मैं ये सोचूं कि आप सच में यहाँ खुश नहीं थीं, इसीलिए अपने भैया को देखते ही रो पड़ी तो? अक्षय का ये सवाल सुनकर अहाना कुछ पल कन्फ्यूज सी उसे देखती रही, फिर नासमझी से बोली, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? हमें वाकई में यहाँ कोई तकलीफ नहीं थी, हम खुश थे आप सबके साथ। आप सबने बहुत ख्याल रखा हमारा, जितना हमने सोचा नहीं था, हमें उतना प्यार, मान और अपनापन मिला। पर जितनी ये बात सच है, उतना ही बड़ा सच ये भी है कि ससुराल ससुराल ही होता है, वो कभी मायके की जगह नहीं ले सकता। इन दिनों हमने अपने परिवार, अपने घर को बहुत याद किया है। हम जानते हैं कि शादी के बाद यही हमारा घर है, ये परिवार ही हमारा परिवार है, और अब सारी जिंदगी हमें आप सबके साथ ही रहना है। पर इसका ये मतलब नहीं कि हम उस परिवार को पूरी तरह से भूल जाएंगे जिनसे हमारा वजूद है, उस घर को विसरा देंगे जहां हमारा बचपन बीता है। उनकी हमारे दिल में एक अलग और बेहद खास जगह है जो हमेशा रहेगी। उनसे हम भावनात्मक रूप से जुड़े हैं, इसीलिए भैया को देखकर हमारी आंखों में आंसू आना, घर जाने की बात पर हमारा खुश होना स्वाभाविक है। पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि हम यहाँ खुश नहीं या आपके साथ रहना नहीं चाहते, इसीलिए प्लीज ऐसा कुछ मत सोचिए। आप हमारे साथ हैं तो हम हर हाल में खुश रह सकते हैं। अब आप हमारे लिए उतने ही अहम हैं जितना हमारा परिवार। अच्छा, अगर मैं इतना ही अहम हूँ तो जैसे यहाँ आपको अपनी फैमिली की याद आई थी, वहाँ अपने घर अपने परिवार के बीच जाकर आपको मेरी याद आएगी? शायद आएगी, पर शायद उतनी नहीं आएगी, क्योंकि अभी आपके साथ हमने ज्यादा वक्त नहीं बिताया है और हमारा रिश्ता उतना गहरा नहीं हुआ है। या शायद इससे भी ज्यादा आएगी, क्योंकि इन दिनों आपके साथ की शायद आदत लग गई है हमें। ये जवाब अहाना के दिल ने दिया था, पर दिल की बात लबों पर नहीं आ सकी। उसके मन की उलझन उसके शब्दों में साफ झलक रही थी। अहाना को खामोश देखकर अक्षय ने आगे बढ़कर प्यार से उसके गाल को छुआ। तब कहीं जाकर अहाना अपने ख्यालों से बाहर आई और काजल से सनी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टकटकी लगाए अक्षय को देखने लगी। अगर जवाब देना इतना मुश्किल है कि आपको इतना सोचना पड़े तो मत दीजिए जवाब। बस इतना याद रखिएगा कि अब आप मेरी अमानत हैं, आप पर मेरा हक है, तो अपना ख्याल रखिएगा। और अगर मेरी कभी भूले भटके याद आ जाए तो उदास मत होइएगा, और रोइएगा तो बिल्कुल नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण आपकी आंखें नम हों या चेहरे पर उदासी के बादल घिराएं। मानेंगी ना मेरी ये बात? अहाना ने झट से हामी भरी, फिर चिंतित निगाहों से उसे देखते हुए विचलित स्वर में बोली, आप भी अपना ख्याल रखिएगा, अपने डॉक्टर के फर्ज को निभाने के साथ अपनी हेल्थ पर भी ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा कि अब हमारी जिंदगी आपसे जुड़ी है, तो हमारे लिए आपको खुद का ध्यान रखना होगा, और अगर वक्त मिले तो हमें फोन कर लीजिएगा। हमें पता नहीं लगता कि आप कब फ्री होते हैं और कब नहीं, कहीं हम आपको डिस्टर्ब न कर दें, इसीलिए भी हम फोन करने से हिचकिचाते थे। आज अहाना ने अपने मन की एक और दुविधा उसके सामने बयां की थी और अक्षय उसकी बात सुनकर खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाया था। बेझिझक जब भी दिल चाहे मुझे फोन कर लीजिएगा, अगर वक्त हुआ तो बात करूंगा, वरना कम से कम कॉल रिसीव करके यही बता दूंगा कि अभी बिजी हूं, बाद में बात करूंगा, या अगर ये भी ना कर सका तो जब वक्त मिलेगा तो आपकी मिस्ड कॉल का जवाब दे दूंगा। वैसे तो मुझे सामने से फोन करके आपको परेशान करने में भी कोई परेशानी नहीं, पर अगर आप खुद से फोन करेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। पक्का हम फोन कर सकते हैं, बाद में ये तो नहीं कहेंगे कि वक्त बेवक्त आपको फोन करके परेशान करते हैं? अहाना ने आंखें बड़ी बड़ी करके इतनी मासूमियत से सवाल किया कि अक्षय बेसाख्ता हंस पड़ा। उसका यूं हंसना अहाना को अपनी तौहीन लगने लगा और नाराजगी से उसके गाल गुब्बारे जैसे फूल गए। उसकी नाराजगी से भरी निगाहों को देखकर अक्षय ने किसी तरह अपनी हंसी को नियंत्रित किया, फिर प्यार से उसके फूले फूले गालों को खींचते हुए मुस्कुरा उठा।
इतनी क्यूट और इनोसेंट क्यों हैं आप? हर बार आपसे और भी ज्यादा मोहब्बत हो जाती है। अक्षय की कहे ये चंद शब्द हाना की नाराजगी को मिटा गए थे। गालों पर सुर्खी दौड़ी थी और पलकें जैसे सजदे में झुक गई थीं। उसकी हया से गुलाबी चेहरे को देखकर अक्षय की मुस्कान गहरी हो गई। जब दिल चाहे कर लीजिएगा फोन, कुछ नहीं कहूंगा मैं। इनफैक्ट आपके डिस्टर्ब करने पर मुझे खुशी होगी, क्योंकि आपका हक है मुझ पर, जिसे आप जैसे चाहें वसूल सकती हैं, और आपका मुझ पर अधिकार जताना मुझे अभी बुरा नहीं लग सकता। अक्षय के शब्द हाना के कानों में पड़े। उसकी लरस्ती पलकें हिली, निगाहें जैसे ही उसके दिलकशी से मुस्कुराते लबों पर, जुगनू सी चमकती आंखों पर पड़ी। हाना की पलकें एक बार फिर झुक गईं और लबों पर सौम्य सी मुस्कान बिखरी। आपके शर्माने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, और ये मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको मुझसे शर्माकर अदा से अपनी पलकों को यूं झुकाने के मौके ताउम्र देता रहूंगा। फिलहाल अपने शर्म हया को छोड़िए और नीचे चलिए, भैया आपका इंतजार कर रहे हैं। आहाना ने झट से सहमति में सिर हिलाया, और जैसे ही कदमों को पीछे हटाने लगी, अक्षय ने उसकी कलाई थामते हुए उसे खुद से दूर जाने से रोक लिया। आहाना आंखों में सवाल लिए उसे देखने लगी। अक्षय ने एक कदम उसकी ओर बढ़ाया और अपनी आंखें मूंदते हुए अपने होठों को उसके माथे पर रख दिया। इस लम्हे में मोहब्बत थी तो जुदाई की तड़प भी थी, जिसे महसूस करते हुए आहाना का मन बेचैन हो उठा। पल भर बाद अक्षय ने उसकी पेशानी को चूमते हुए अपने कदमों को पीछे हटाया और हौले से मुस्कुरा दिया। अब चलिए। आहाना ने पलकें उठाकर पल भर उसे देखा, फिर सिर हिला दिया। नीचे जाकर आहाना ने पहले कुल देवी देवता का आशीर्वाद लिया, फिर विदाई की कुछ रस्मों को निभाते हुए अपने भैया संग अपने घर की ओर चल दी। कानपुर में अनु के आने की खुशी सबके चेहरों पर झलक रही थी। सभी उसके स्वागत की तैयारियों में लगे थे। दोपहर के करीब 4 बजे कार शुक्ला निरास में दाखिल हुई। आहाना ने उतरने से पहले ही अक्षय को मैसेज कर दिया था। दृशांत के साथ वो अंदर आई तो सबसे पहले जयंती जी ने उसकी आरती उतारी, साथ ही नजर भी उतारी। उसने बड़े ही उत्साह के साथ जयंती जी और जयेश जी के पैर छुए। दोनों ने उसे ढेरों आशीर्वाद देते हुए अपने सीने से लगाकर लाड किया। उनके बाद वो पल्लवी के पास आई और दोनों सहेलियां एक दूसरे से लिपटते हुए रोने लगीं।
अच्छा जीजी, अब रोना धोना बस भी करो और जरा इधर भी ध्यान दो, हम दोनों भी इंतजार में पलके बिछाए खड़े हैं। अंतरा ने जब दोनों को एक दूसरे से लिपटे आंसू बहाते देखा तो वो चुप न रह सकी और फट से बोल पड़ी। आहाना ने अपने आंसू पोछे और अपने दोनों भाई बहनों को गले से लगा लिया। सबसे मिलने के बाद उसे फ्रेश होने के लिए भेजा गया। सबने साथ बैठकर खाना खाया। आज तो सब उसकी पसंद का बना था, और इतने दिनों बाद अपनी माँ के हाथ का खाना खाकर उसका मन तृप्त हो गया था। ये स्वाद और ये प्यार उसे कहीं और नहीं मिल सकता था। खाने पीने के बाद आंगन में सबकी महफिल जमी, सवाल जवाब शुरू हुए। सबको बड़ी ही उत्सुकता से वहाँ के बारे में जानने का इंतजार था, और आहाना भी खुशी खुशी उनके हर सवाल का जवाब दे रही थी, जिससे उनकी चिंताएं कम होने लगी थीं। बहुत दिन बाद आज शुक्ला निवास में इतनी रौनक थी और सबके चेहरों पर खुशी झलक रही थी। आहाना आज बड़े ही शौक से अपनी माँ की गोद में सिर रखकर लेटी थी। जयेश जी उसके पास बैठे प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर रहे थे। उसका परिवार उसे घेर कर बैठा था और बातों के बीच खूब हंसी ठिठोली हो रही थी। आज वो भी दिल से मुस्कुरा रही थी। अपने घर आकर नन्ही चिड़िया जैसे चहक उठी थी, खुशी से खिलखिला रही थी। जो सुकून इस आंगन में था वो दुनिया में कहीं और नहीं था। शाम तक पल्लवी के परिवार संग आसपास की औरतें भी उससे मिलने आने लगी थीं, और सबकी सवालों के आहाना बड़ी ही सहजता से जवाब दे रही थी। घर में मेला सा लगा था और हर कोई खुश था। दोपहर को आई आहाना को एक पल का एकांत नहीं मिला कि अक्षय को फ़ोन कर सके। उसका मैसेज आया था कि फुर्सत मिलने पर कॉल करे, लेकिन आहाना को किसी ने अकेला छोड़ा ही नहीं, और आखिर में उसे मौका रात को मिला, जब पल्लवी ने उसे आराम करने कमरे में भेज दिया। कमरे में अंतरा थी। यही सोचते हुए आहाना ने कदम छत की ओर बढ़ा दिए। अभी वो अक्षय को फ़ोन करने ही वाली थी कि इतने में सामने से अक्षय का ही फ़ोन आ गया। आहाना पहले तो चौंक गई, फिर झट से कॉल रिसीव करते हुए फ़ोन कान पर लगा लिया।